ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों के लिए प्रचार चरम पर 25 मई शनिवार को मतदान होगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, स्वाति मालीवाल के साथ कथित दुर्व्यवहार जैसी घटनाओं से दुनिया भर में भारत की छवि खराब होती है। दिल्ली में आज अब तक की सर्वाधिक 7,717 मेगावाट बिजली की खपत हुई। दिल्ली सरकार ने सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से 30 जून तक गर्मी की छुट्टी देने के निर्देश दिए और दिल्ली पुलिस ने आज 1,266 कांस्टेबल शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली में 25 मई को होने वाले मतदान के लिए सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सभी दलों के नेता अलग अलग इलाकों में रैलियां, रोड शो, नुक्कड़ सभाएं करके मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। दिल्ली में 1,52,00,000 से अधिक मतदाता हैं, जिसमें से 82,00,000 पुरुष और 70,00,000 के करीब महिला मतदाता हैं। पहली बार 2,52,000 से अधिक युवा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए कुल 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज पालम इलाके में दक्षिणी दिल्ली के प्रत्याशी रामवीर सिंह विधूड़ी के पक्ष में रोड शो किया। इसके अतिरिक्त चांदनी चौक से पार्टी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के पक्ष में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के पक्ष में रिठाला में रैली की। भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने भी नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के समर्थन में भजनपुरा इलाके में रोड शो कर रहे हैं। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल ने त्रिनगर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महाबल मिश्रा ने राजौरी गार्डन और टैगोर गार्डन में जनसभा को संबोधित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दल अपने पक्ष में करने के लिए पूरे जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं।
चुनाव प्रचार समाप्त होने में महज 3 दिन से भी कम समय बाकी है और ऐसे में राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच राजनीतिक तापमान अपने चरम पर है। रोड शो, जनसभा, घर घर जाकर प्रचार के जरिए विभिन्न दलों के नेता लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा और विपक्षी आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा राजधानी में कथित शराब घोटाले और अन्य अनियमितताओं के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा धारा 370 की समाप्ति और धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ अपनी बातें पुरजोर तरीके से रख रही है। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित दुर्व्यवहार ने भाजपा को आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस चुनाव में हमले का एक और मुद्दा दे दिया है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन महंगाई, बेरोजगारी, केंद्रीय एजेंसियों का कथित दुरुपयोग के साथ साथ संविधान को कथित तौर पर कमजोर करने जैसे मुद्दों को उछालकर भाजपा पर हमलावर है। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है। दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया है कि भीषण गर्मी को देखते हुए पंखे और पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री सिंह ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज रैली निकाली गई। उन्होंने बताया कि सराय ख्वाजा जूनियर विद्यार्थियों ने रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक जनसभा में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की तीखी आलोचना की और कहा कि ये पार्टियां आपराधिक तत्वों को शरण देती हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों में माफिया को खुला छोड़ा जाता था और वे गरीबों और वंचितों की जमीनें हथियाने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद अब ये जेलों में बंद हैं। प्रधानमंत्री प्रयागराज में भाजपा के उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी और फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रवीण पटेल के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद वाराणसी पहुंचेंगे और अपने संसदीय क्षेत्र की 25,000 से अधिक महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। वे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री से संवाद करने वाली महिलाओं में गृहिणी, डॉक्टर, शिक्षक, उद्यमी, अधिवक्ता और खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज रात वाराणसी में रहेंगे और कल उत्तर प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई इस घटना पर दुख जताया। स्वाति मालीवाल ने इस घटना के संबंध में श्री सक्सेना को फोन पर जानकारी दी। स्वाति मालीवाल ने सबूतों के साथ कथित छेड़छाड़ पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव पर आरोप है कि उन्होंने इस महीने की 13 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी। मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होगी। पिछले वर्ष 26 फरवरी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से सिसोदिया न्यायिक हिरासत में है। बाद में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने भी गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस आधार पर सिसोदिया को राहत दिए जाने का विरोध किया कि अभियुक्त के असहयोग के कारण मामले में आरोप तय करने में लगातार देरी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज अब तक की सबसे अधिक बिजली की मांग रही। राज्य विद्युत वितरण केंद्र के अनुसार आज दोपहर शहर में 7,717 मेगावाट बिजली की खपत हुई, जो अब तक की सबसे अधिक है। इससे पहले जून 2022 में 7,695 मेगावाट बिजली का उपयोग हुआ था। इस समय दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक अत्यधिक गर्मी पड़ने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली पुलिस ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी फर्जी कंपनी के माध्यम से स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए लोगों से पैसे लेते थे। इन्होंने कंपनियों में निवेश करने के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए लोगों से लिए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 250 सिम कार्ड, 84 मोबाइल फोन और 28 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस में आज 1,266 नए कांस्टेबल शामिल हुए। दिल्ली के वजीराबाद में इन नए कांस्टेबलों के नए बैच के लिए पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त एसके गौतम ने इस पासिंग आउट परेड की सलामी ली। उन्होंने सभी नवनियुक्त कांस्टेबलों को बधाई देते हुए उन्हें समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन सभी कांस्टेबल को नए आपराधिक कानूनों, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम के साथ साथ अन्य कौशलों में भी प्रशिक्षित किया गया है। इनके प्रशिक्षण में शारीरिक फिटनेस एक महत्वपूर्ण पहलू था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से 30 जून तक की गर्मी छुट्टी देने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि सभी विद्यालयों को 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश देने के निर्देश दिए गए थे। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में लगातार गर्मी बढ़ रही है। रविवार को देश में सर्वाधिक 47.8 डिग्री तापमान दिल्ली में नजफगढ़ में दर्ज किया गया। गाजियाबाद में भी भीषण गर्मी के कारण जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 25 मई तक छुट्टी घोषित की है। दिल्ली में आज तेज धूप और गर्म हवाओं के चलने के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में आसमान साफ रहने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली में आज 2 लोगों ने अंगदान कर 8 लोगों को नई जिंदगी दी। इसके अलावा 4 लोगों को नई रोशनी मिली। इनमें एक मरीज 22 साल का और दूसरा 27 साल का था जिसने अपना अंगदान किया। जयप्रकाश नारायण एपिक्स ट्रॉमा सेंटर के अनुसार पहली बार 2 लोगों के एक साथ अंग निकाले गए जिसमें एम्स और अन्य अस्पतालों के डॉक्टर शामिल थे। एम्स में भर्ती मरीजों को 1 हृदय, 1 लीवर, 3 किडनी और 4 कॉर्निया प्राप्त हुए। इसके अलावा भारतीय यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान में भर्ती मरीजों को 1 लीवर और 1 किडनी प्राप्त हुआ। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों के अंतर्गत आज से योग अभ्यास कार्यक्रम शुरू किया है। ये 30 दिन तक चलेगा। संस्थान की महानिदेशक तनुजा नेसारी ने कहा है कि आयुर्वेद और योग आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने सभी से योग के सिद्धांतों को अपनाकर संतुलित जीवन जीने की अपील की। इस अवसर पर आध्यात्मिक गुरु ब्रह्म कुमारी शिवानी ने कहा है कि योग शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। उन्होंने शीघ्र उपचार में सकारात्मक ऊर्जा की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है महिला सशक्तिकरण के लिए योग। राष्ट्रीय राजधानी में नेशनल बुक ट्रस्ट NBT के द्वारा बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया है। ये कैंप 3 जून तक चलेगा। NBT की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार वसंत कुंज में चल रहे इस समर कैंप में भाग लेने के लिए 1000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। 15 दिनों तक चलने वाले समर कैंप में बच्चों के लिए 100 से अधिक रचनात्मक कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें 500 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कहानी वाचन, पेपर क्राफ्ट, कठपुतली का खेल, पत्र लेखन, थिएटर, खिलौना बनाना, योग और खेल खेल में विज्ञान शामिल हैं। आज विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है। इसका आयोजन दुनिया भर की संस्कृतियों की खूबियों और शांति तथा टिकाऊ विकास में भिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद की भूमिका को उजागर करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि दुनिया के 90% संघर्ष अलग अलग संस्कृति के लोगों के बीच संवाद कम होने के कारण ही हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के अनुसार सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्र को लोक नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में समुचित स्थान नहीं मिल पाया है। इस दिवस का आयोजन सांस्कृतिक विविधता की समझ विकसित करने के उद्देश्य से किया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों के लिए प्रचार चरम पर। मतदान 25 मई को होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 7,717 मेगावाट बिजली की खपत हुई, जो अब तक की सबसे अधिक बिजली की खपत रही। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली सरकार ने सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से 30 जून तक गर्मी की छुट्टी देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।